Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena.
Namaskar. Aarti Khabron ke karyakram Market Mantra mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hum desh aur duniya se aarthik, vyaparik aur share bazaar ke taza samachar aap tak layenge aur un par charcha bhi karenge. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ एके भट्टाचार्य. भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
नमस्कार. थैंक यू वेरी मच.
और अब हेडलाइंस के साथ हैं राजेश लेख.
बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्सेस डिक्लाइन ओवर 0.5% अमिड एस्केलेटिंग जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स. सेंसेक्स फॉल्स ओवर 400 पॉइंट्स. निफ्टी क्लोजेस बिलो 24,300. Most Asian markets end in positive territory. European indices trade with gains following 25 basis point rate cut by Bank of England and hopes of UK and US trade deal. And global crude oil prices rise over 1%. Brent crude trades at $62.08 per barrel.
बढ़ते क्षेत्रीय संघर्ष के बीच घरेलू शेयर बाजारों में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई. सेंसेक्स 400 अंक से अधिक गिरा. निफ्टी 24,300 अंकों के नीचे बंद हुआ. एशिया के अधिकांश बाजारों में बढ़त दिखाई दी. बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती और अमरीका ब्रिटेन के बीच संभावित व्यापार समझौते के बीच यूरोप के अधिकांश बाजारों में बढ़ोतरी दर्ज की गई और दुनिया के बाजारों में कच्चे तेल के मूल्य 1% से अधिक बढ़े. ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल का मूल्य $62.08 प्रति बैरल दर्ज किया गया. और आज की पहली खबर. भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच घरेलू शेयर बाजार आज 0.5% से अधिक की गिरावट के साथ बंद हुए. आईटी और मीडिया सेक्टर्स में तो बढ़त बनी रही लेकिन अन्य सभी सेक्टर्स में बाजार बंद होने के आखिरी घंटे के दौरान बिकवाली के दबाव में गिरावट दर्ज की गई. 30 शेयरों पर आधारित बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 412 अंक यानी 0.51% की गिरावट के साथ 80,335 अंकों पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 141 अंक यानी 0.58% गिरकर 24,274 अंकों पर आ गया. बंबई शेयर बाजार के व्यापक बाजार में भी तेज गिरावट दिखाई दी. मिडकैप सूचकांक 1.9% और स्मॉल कैप सूचकांक 1% से अधिक गिरा.
The benchmark domestic equity indices today ended sharply lower, with a fall of over 0.5% amid escalating tensions between India and Pakistan. On the sectoral front, IT and media managed to hold gains, while all other sectors succumbed to selling pressure during the last hour of trade. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, fell 412 points, or 0.51% to close at 80,335. The National Stock Exchange Nifty 50 lost 141 points or 0.58% to settle at 24,274. The broader market indices at the BSE also ended with deep cuts. The mid-cap index declined 1.9% and the small-cap index slipped over 1%. In the Sensex pack, 23 out of 30 companies edged down. In the top laggards, Eternal slid over 3.1%, Mahindra & Mahindra slipped more than 2.8%, and Maruti dropped over 2%. Among the top gainers, HCL Tech climbed over 1%, Kotak Bank as well as Axis Bank rose 0.8% each, and Titan added almost 0.7%. In sectoral indices at the BSE, 19 out of 21 sectors ended in negative territory. Among the top laggards, realty fell 2.6%, Oil and gas lost almost 2% and auto declined over 1.9%. The only two gainers were focused IT, which added 0.2%, and information technology gained 0.12%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,548 companies declined, 1,349 advanced, and shares of 135 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 26 companies hit their 52-week high, while 52 companies hit their 50-week, two-week low.
और भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए में आज 88 पैसे की गिरावट दिखाई दी. एक अमरीकी डॉलर की कीमत 85.71 रुपए दर्ज की गई. विश्व की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमरीकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 99.99 पर कारोबार कर रहा था. भट्टाचार्य जी, जैसा शेयर बाजार का हाल हमने देखा कि हालांकि काफ़ी अच्छी खबरें थीं दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से और उम्मीद थी कि भारत का जो शेयर बाजार है वो अच्छा प्रदर्शन करेगा, लेकिन आखिरी समय में ये जो तनाव है इसका असर दिखाई दिया. आप कैसे विश्लेषित करते हैं इसको?
देखिए, जैसे आपने कहा कि एक डर का वातावरण है, जब एक युद्ध तो नहीं कहूंगा मैं, युद्ध की स्थिति जब मंडराती है उस तरह से, तब स्टॉक मार्केट उस नर्वसनेस को रिफ्लेक्ट करता है. और मैं वही चीज स्टॉक मार्केट में आज की तारीख में जो दिख रहा है वो एक नर्वसनेस दिख रहा है. और ये नर्वसनेस का एकदम डायरेक्ट कारण जो है वो जैसे आपने कहा कि जो तनाव जो है वो तनाव, और ये तनाव जब तक रहेगा मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट को भी ये एक नर्वसनेस ये दिखेगा. पर ये नर्वसनेस बावजूद मैं ये कहूंगा कि जो इनहेरेंट जो स्ट्रेंथ जो है मार्केट का वो अभी भी बरकरार है. अभी भी अगर आप देखेंगे जो गेन्स पिछले एक महीने में जो स्टॉक मार्केट ने की है उसको काफी हद तक उन्होंने रिटेन करके रखा है. और अगर आप एक साल का रिटर्न अगर देखेंगे आप तो करीबन 8 और 9% का एक साल का रिटर्न अभी भी स्टॉक मार्केट को दिख रहा है. तो अगर हम जो तनाव का जो वातावरण है उसमें थोड़ी बहुत अगर कोई इम्प्रूवमेंट या रिकवरी होती है तो जो सारे जो पॉजिटिव डेवलपमेंट डोमेस्टिक और ग्लोबल
जी
उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट को दिखेगा. डोमेस्टिक डेवलपमेंट पहली बात तो है कि इंडिया के साथ यूनाइटेड किंगडम का एक बहुत बड़ा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है. उसमें काफ़ी एक्सपोर्ट्स होने की और हमारी जो इम्पोर्ट्स की जो कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स है वो घटने की, जिससे कि हमारी कॉम्पिटिटिवनेस या प्रतिस्पर्धा इकोनॉमिक की जो प्रतिस्पर्धाशीलता जो है उसमें एक इम्प्रूवमेंट दिखेगी. दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो यूएस में जो इंटरेस्ट रेट जो है उन्होंने जेरेमी पावल साहब ने इन्फ्लेशन को एक इंडिकेशन दिया कि इन्फ्लेशन में अभी भी डर है यूएस में, क्योंकि यूएस का टैरिफ का डर अभी भी है. पर ओवरऑल अभी भी वो कि 50 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन कट इंटरेस्ट रेट पूरे साल में होने से उन्होंने इनकार नहीं किया है अभी. तीसरी बात, यूके सेंट्रल बैंक ने 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट किया है और यूएस और यूके के साथ आप एक नया ट्रेड डील होगा जिससे जो टैरिफ रिलेटेड जो बहुत बड़ी जो एक टेंशन वरीज चिंता का जो कारण बन रहा था वो एक इंडिया यूके का और यूएस यूके का. और अगर हम आशा कर सकते हैं क्योंकि ट्रंप साहब का एक स्टेटमेंट कल आया है कि वो बहुत ही जल्दी एक जीरो टैरिफ एग्रीमेंट इंडिया के साथ हो जाने वाला है. तो जो स्टॉक मार्केट जो दिखा रहा है वो ये जो एक युद्ध का जो एक तनाव है उसने सारी ये चीजों को निगेट करते हुए किया है. पर मेरा मानना यह है कि जब तक ये युद्ध का तनाव रहेगा तब तक ये जो सारी जो पॉजिटिव डेवलपमेंट मैंने जिसकी
इसका इम्पैक्ट
स्टॉक मार्केट पे नहीं दिखाई देगा. पर मैं ये हमें आशा करना चाहिए कि ये टेम्पररी है, ये टेम्पररी है स्टॉक मार्केट के लिए। जो रियल वैल्यू जो है अभी भी बरकरार है, अभी भी जो निफ्टी जो है 24,000 के ऊपर चल रहा है, जो रेजिस्टेंस लेवल है बहुत लोग कह रहे हैं कि 23,900 में अटकटक जाएगा। तो सब चीज को देखते हुए मैं समझता हूँ कि टेंशन है, चिंता की बात है, पर जो पॉजिटिव डेवलपमेंट चारों ओर है वो एक शायद हमें एक आशा की किरण दूर दूर दिखाई दे सकती है।
Given what you said, Kibi, that our fundamentals are pretty strong, yeah, and all the good news that you talked about, we will talk about them in detail as we go along. Do you think this over 0.5% fall in the market that was observed today was could have been more, but because of our fundamentals that we have stopped there?
Well, I would agree with you that assessment of yours. It could have been worse, but because of those positive developments and the fundamentals of the economy, where in spite of all that has happened, India's growth trajectory looks by and large unchanged. There is a minor reduction in the target or the projection for the growth rate by 0.25 percentage point, which is nothing. We are still will like to grow over 6%. The crude oil prices are around 60 to 65 or 62 dollar a barrel. The rupee only today it actually it depreciated a bit, but that is once again because of the nervousness on the border tensions.
So, given what you said that it may last a little longer, knowing the past history between the two nations, what should an investor be doing in a short term and long term horizon?
Well, I think you should be on the sidelines. You, as an investor, you should maybe park your money. If you are already invested, there's no point redeeming your money, because the moment you redeem that money, you are booking your losses. Mm. So it will probably be safer to stay invested and wait for the opportunity or the time before these war clouds lift, and you see the actual value of the market can be realized. Investing more in this market is not something meant for those who have a weak heart, but this is also a time for those who have strong heart can look at, take positions, because the market is slightly depressed. Maybe when, as I said, when things look up, they can make more gains. But it is meant only for those who are not risk averse. If you are risk averse, then it is the time to be on the sidelines.
Should a new investor be looking at two gainers that we had today in the sectoral indices, like the focused IT and the information technology sector?
You know, as I said, that the IT is done well in spite of the war tension because of the India-UK trade agreement. Because the India-UK trade agreement has got a big bonus to India's digital services exports, and also the Indian tech companies can reduce their costs and park their techies in UK without paying for the social security costs, so therefore the tech companies are reflecting that gain, and also please remember that the tech companies, they are mostly because they are dependent on exports, and that export outlook is looking little better because of the India-UK trade agreement and likelihood of India and US signing an agreement. And maybe by the end of the year, you will have an India-EU agreement also. So that is staying unaffected by what is happening across the border. That's the reason. But if you look at all of the manufacturing sectors, and like in the Mahindras and others, they have been affected in spite of the agreements that we talked about.
Coming to the UK Bank of England rate cut that they have done, the inflation in UK currently sits at 2.6%, and it's temporarily going to rise because of rise in prices in April, particularly in energy and water bills. Do you believe that the bank is prioritizing shielding the economy from the broader impact of trade tensions and falling demand?
I think they are in a slightly better situation than the U.S. The U.S. is already in a zone where there is a decline in output for the first quarter. UK has been in this phase for quite some time. So now that the inflation is slightly under control, they have taken the plunge towards reducing the cost of money so that they can take some advantage of lower cost of money to provide or prop up growth. So this is a calculated risk the Central Bank of UK is taking. And please remember that they are also banking a lot on improved relations with the US after the UK trade deal. So therefore, I would say that the Central Bank, Bank of England's move to cut interest rates will actually revive some animal spirit in the UK economy. And I would not be surprised if a positive fallout impact is also felt on Indian shores.
भट्टाचार्य जी, अगर रुपए की हम बात करें, जिसे आज भी काफी गिरावट दर्ज की गई, हालांकि काफी समय से काफी स्टेबल था रुपया, लेकिन अब ऐसे समय में जबकि डॉलर काफी मजबूत दिखाई दे रहा है और क्रूड ऑयल के दाम भी बढ़ रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि रुपए पे थोड़ा सा दबाव हमें दिखाई देगा आने वाले समय में? और किस रेंज में आपको लगता है रुपए संभावित रहेगा अगले?
देखिए, इस वक्त जो अगर आप ट्रेड वेटेड इंडेक्स देखते हैं, भारतीय जो मुद्रा की जो एक्सचेंज वैल्यू जो है वो अभी भी ओवर वैल्यूड है, तो मुझे लग रहा है कि जो वैल्यू इस वक्त जो है वो थोड़ी बहुत और नीचे आ सकती है, और उसके नीचे जाने से कोई बेसिक्स जो अर्थनीति में जो क्षति जो हम कहते हैं वो क्षति नहीं होगी, हालांकि वो हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस में सहायक होगी और इम्पोर्ट को भी चेक करेगी. सो जो चीज आज हुआ है वो एक मैं समझता हूँ कि एक कोर्स करेक्शन है, और उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है. मैं डरने वाली बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि उधर आप अगर क्रूड ऑयल की प्राइस देखें वो अभी भी बिनाइन है, वो भी 60-62 डॉलर पर बैरल है. तो हमारी जो मेन जो इम्पोर्ट की जो वस्तु जो है वो क्रूड ऑयल है, उसे मुझे लगता नहीं है कि आज की जो डिप्रिसिएशन जो हुआ है उससे कोई ज्यादा चिंताजनक बात है.
व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्रिटेन? दे आर गोइंग टू बी अनाउंसिंग अ डील टू लोअर सम ऑफ ट्रम्प्स टैरिफ्स ऑन ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स. व्हाट रेपरकशन विल दैट हैव इन द ईयू and in other international markets?
Well, I think there's a lot, actually, because you are going to see, number one, resetting of economic relations between the United States and UK. So far, what has been the narrative so far? The narrative has been that the US, as the big brother in the US-EU or Europe relations, has been lowering its tariffs, whereas Europe has set its tariffs at a slightly higher level. So now what I can see is this, that through this trade deal, there will be resetting of relationship wherein the idea of a zero tariff under an agreement will become a two-way traffic, in a sense that it will not just be US which strives towards zero tariff, but even UK strives towards that. It will necessarily make the UK industry more competitive, and the US cost of its imports from UK will come down. To the point that I was referring to earlier, that Mr. Jeremy Powell's concerns about tariff being going up, and therefore द इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन विल गो अप. दैट विल ऑल्सो कैन बी एड्रेस टू सम एक्सटेंट टू द पॉइंट दैट वी द यूएस विल इम्पोर्टिंग थिंग्स फ्रॉम द यूके. सो नेट नेट वट आई सी इज दिस दैट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन इन बोथ यूएस एंड यूके बिकॉज रेजिंग टैरिफ्स डजंट हेल्प either of the countries.
Right.
It will force domestic industries in the UK to become more competitive, and the US will gain because it will continue to have access to cheaper goods and even services from UK. So I think it will have a major positive impact, not just then on the relationship between the US and UK, but it will have an impact on USS's potential agreement with other stakeholders. And I do not know whether it means that US and China will come to terms and enter into some sort of a negotiation. That is not something that probably will happen in a hurry, but certainly it will have a positive impact also on India's trade
as
talks.
As long as it is zero tariff.
और चलते हैं एशिया और यूरोप के बाजारों का हाल जान लेते हैं. एशिया के अधिकांश शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए. जापान में टोक्यो शेयर बाजार का निकेई 0.4% से अधिक और हांगकांग शेयर बाजार का हैंगसेंग इंडेक्स 0.3% से अधिक बढ़ा. चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में भी लगभग 0.3% की बढ़त दर्ज की गई. दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 0.22% की बढ़त दिखाई दी. दूसरी ओर सिंगापुर स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.4% से अधिक गिर गया. इस बीच यूरोप के प्रमुख शेयर बाजार आज दिन में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे. जर्मनी के डैक्स और फ्रांस के कैग दोनों में ही बढ़त दिखाई दी.
The stock markets in Pakistan continue to tumble today as trading was halted at the Karachi Stock Exchange, KSE, amid rising geopolitical tensions. KSE fell more than 6% today before the trading was halted. The stock exchange has been witnessing a continuous decline since the barbaric Pahalgam terror attack. The main index, Karachi Stock Exchange 100 Index KSE 100, has slipped by more than 13% since April 22, when the terror attack took place, killing 26 people, most of them tourists. Apart from this, another Pakistani stock index, KSE 30, has also fallen more than 14% since April 22. Amid the grim state of the stock markets, Pakistan has only $15 billion of foreign exchange reserves left and is on the verge of economic collapse. The country is seeking a fresh loan worth $1.3 billion from the International Monetary Fund to run its economy. That's a sorry state of affairs, and yet...
it's a sorry state of affairs. It only shows the precarity of the situation as far as Pakistan is concerned. Economically speaking, Pakistan is in dire need of this loan. And I'm reasonably certain that the Indian representatives on the IMF board, when the application comes up for this thing, will make their objections or reservations known. Because by using the IMF money should not be used by any
for nefarious activities
or terrorist activities. Okay. So I think that is a big issue. But what you said about the Karachi Stock Exchange, it tells you about the stock market's assessment of what is really going on the border.
Okay. Moving on, the U.S. stocks ended higher on Wednesday in choppy trading, buoyed as semiconductor stocks rallied late on a report that regulations on artificial intelligence chips would be loosened. The Dow Jones Industrial Average gained 0.7%, S&P 500 added over 0.4%, and Nasdaq Composite rose 0.27%. Meanwhile, U.S. Federal Reserve has kept its benchmark interest rates unchanged in the 4.25% to 4.50% range. The American Central Bank said in its policy statement that since the last meeting of the Fed in March, uncertainty about the economic outlook has increased further.
और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि भारत अब दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश है। श्री गडकरी ने यह बात नई दिल्ली में आयोजित चौथे अंतर्राष्ट्रीय बीबीबी सम्मेलन और बायो एनर्जी वैल्यू चेन एक्सपो को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने बताया कि देश का ऑटोमोबाइल उद्योग लगातार बढ़ रहा है, विभिन्न प्रकार के वाहनों की मांग बढ़ रही है और साथ ही ऑटोमोबाइल के विकास के कारण जीवाश्म ईंधन की खपत भी बढ़ेगी।
Brief comment on the US. In fact, they have kept the rates unchanged. But even Jeremy Powell has stated that it remains unclear whether the economy will continue to continue its steady growth or face pressure from the trade uncertainties and inflation concerns.
I think his own country. Yeah, I think Jeremy Powell is showing what an independent central banker ought to be.
Yeah.
I mean, in spite of the political statements that the leadership in the U.S. Has said, the central bank governor there, the Fed Reserve chairperson, has clearly indicated that it's time for caution, it's time not for adventurism, because the inflation concerns are very much there. But hypothetically, if the U.S.-UK trade leads to lower tariffs, if the U.S.-India trade leads to lower tariffs, and this has an overall positive effect on the overall trade costs, you know, import costs for the U.S., inflation worries will be less, and probably the U.S. economy may also bounce back into you know, growth, maybe a small amount of 1% growth or whatever in the second quarter. Remember, it declined, its output declined by 0.3% in the first quarter.
Okay. Moving on, the Atal Pension Yojana has achieved a remarkable milestone of 7.65 crore subscribers and nearly 46,000 crore corpus as of April 2025. The APY has secured retirement for India's unorganized sector workers, with a significant 48% of subscribers being women. Oil prices today, supported by hopes of a breakthrough in trade talks, they rose between the trade talks, the United States and China, the world's two largest oil consumers. Brent crude was trading over 1.5% up at $62.08 per barrel. WTI crude was also up by 1.8% to $59.14 per barrel when reports last came in.
और सराफा बाजार में सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.11% गिरकर 97,270 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 0.03% बढ़कर 95,870 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक जून में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.16% गिरकर 96,936 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं जुलाई में आपूर्ति की जाने वाली चांदी का वायदा मूल्य 0.06% बढ़कर 95,788 रुपये प्रति किलोग्राम पर चल रहा था। भट्टाचार्य जी, सोने के मूल्य के बारे में आप कोई संक्षिप्त टिप्पणी करना चाहेंगे?
देखिए, जब स्टॉक मार्केट में उथल पुथल होती है तब सोना और चांदी एक रिलेटिवली सेफ जोन माना जाता है और वही आज के सोना में दिखाई दे रहा है।
और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। भट्टाचार्य जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने और प्रमुख खबरों पर बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, धन्यवाद।
थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्सेस डिक्लाइन ओवर 0.5% अमिड एस्केलेटिंग जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स। सेंसेक्स फॉल्स ओवर 400 पॉइंट्स। निफ्टी क्लोजेस बिलो 24,300। मोस्ट एशियन मार्केट्स एंड इन पॉजिटिव टेरिटरी। यूरोपियन इंडेक्सेस ट्रेड with gains falling 25 basis point rate cut by Bank of England and hopes of UK and US trade deal and global crude oil prices rise. And that's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.